समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाओ।
जिंदगी को धुएं में न उड़ाओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए साहब, जिंदगी का साथ निभाना बहुत अच्छी बात है, पर उसे धुएं में उड़ाना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जिस जमाने में ये गाना रिलीज हुआ था तब धूम्रपान के गलत प्रभावों के बारे में ज्यादा और ठीक जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे धूम्रपान के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार होने लगा, और आज सभी को मालूम है कि धूम्रपान अच्छी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। बल्कि ये जानकारी हम अपने श्रोताओं को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है, जो प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान को देखते हुए साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा 7 अप्रैल 1988 से इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया। इसके बाद हर 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का फैसला किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने 31 मई का दिन निर्धारित करके धूम्रपान के सेवन से होने वाली हानियों और खतरों से विश्व जनमत को अवगत करा के इसके उत्पाद एवं सेवन को कम करने की दिशा में आधारभूत कार्रवाई करने का प्रयास किया है। इसी दिशा में प्रतिवर्ष प्रतीकात्मक रूप में एक नारा निर्धारित किया जाता है। हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे को एक अलग थीम के साथ मनाया जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर तंबाकू मुक्त समाज का निर्माण करने का संकल्प लें। सुबह के 7:30 और 19 सेकंड पर सभी श्रोताओं को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुक्रवार के एक नए दिन की सुबह में इसी सुविचार के साथ आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर और सुभद्रा रामचंद्रन, हम दोनों का नमस्कार।
हेलो रवि, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू हियर आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। So we have lots to share with you all friends and lots of music to play also. So Ravi, without wasting any time, let's begin with some news headlines.
जी बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो किया। इस चरण में कल 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा में 42 सीटों पर विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी इसी चरण में होगा।
Prime Minister Narendra Modi lauded the remarkable feat of IIT Madras startup Agnikul Cosmos, which has launched the world's first rocket with a single-piece three-dimensional printed engine. In a social media post, he said that the successful launch of Agniban rocket is a momentous occasion for India's space sector and a testament to the remarkable ingenuity of our Yuva Shakti. Mr. Modi conveyed his best wishes to the Agnikul Cosmos team for their full endeavours.
यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरपोल से आगमन की जानकारी मिलने के बाद कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम, बेंगलुरु पुलिस और आवर्जन अधिकारियों ने रेवन्ना को हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार करने की तैयारी कर रखी थी। रेवन्ना को उनके घर काम करने वाली एक महिला की यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता रेवन्ना ने हासन संसदीय क्षेत्र में मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को देश छोड़ दिया था।
In Jammu and Kashmir, the death toll following yesterday's accident has mounted to 22. The mishap occurred when an overloaded bus carrying pilgrims hailing from Uttar Pradesh and Rajasthan to Shivkori in Riyasi district rolled down into a deep gorge in Akhnoor area of Jammu district. 69 others injured following the accident. Immediately after the accident, residents of the area Akhnoor, police and army from the nearby Tanda unit rushed to the spot and launched rescue operation. All the injured were shifted to sub-district hospital Akhnoor, from where the critically injured were referred to GMC Hospital, Jammu. In the meantime, District Magistrate Jammu has ordered a magisterial inquiry to investigate the cause of accident.
भारत और जापान ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक की है. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में दोनों देशों ने अपने अपने क्षेत्रों में आतंकवाद के खतरों पर विचार विमर्श किया. उन्होंने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में सीमापार आतंकवाद के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों पर भी चर्चा की. मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने, संगठित अपराधों जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.
In a significant achievement for India's power sector, the country has met a record maximum power demand of 250 gigawatt. Power Ministry said All India non-solar demand met has also touched an all-time high of 234.3 gigawatt yesterday, reflecting the combined impact of weather-related loads and growing industrial and residential power consumption in these areas. Northern region also achieved a record demand met, reaching an all-time high of 86.7 gigawatt, while the western region also touched its maximum demand met of 74.8 gigawatt.
मौसम विभाग ने केरल में मॉनसून के आगमन की पुष्टि कर दी है. मॉनसून पहले के अनुमान से एक दिन पहले ही पहुंच गया है. राज्य में पिछले कुछ दिनों से मॉनसून से पहले की भारी बारिश हो रही है. केरल के सभी 14 जिले अलर्ट पर हैं. अलाप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम में ऑरेंज अलर्ट है. अन्य सभी जिले येलो अलर्ट पर हैं.
In Manipur, the flash flood continues to wreak havoc in Manipur. Imphal city has been badly affected by the flood. Most of the roads leading to Imphal town have been submerged. The Raj Bhavan and surrounding areas have also submerged in water. The Khairambad Ema market and other markets look deserted as water inundated in the area.
सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद दुनिया की दूसरे नंबर की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची.
India's Sachin Suvaj, Sanjeev Kumar, Amit Pangal and Jasmine took another step towards Paris Olympic qualification as they advanced to the next round of the Boxing World Qualifiers in Bangkok yesterday. Suvaj started the proceedings for India in the 57 category with a decisive 5-0 victory over Olympian Batuhan Sifti of Turkey in the pre-quarterfinals.
नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत की वैशाली रमेश बाबू ने महिला वर्ग में अपना दबदबा कायम रखते हुए अपनी बढ़त 2.5 अंकों तक पहुंचा दी है. ओपन सेक्शन शतरंज में अमरीकी ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरा भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंदा को हराकर शीर्ष पर पहुंच गए. तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार. और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं सुभद्रा रामचंद्रन.
यस, थैंक यू रवि. लेट्स स्टार्ट विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई. Greater Chennai Corporation desilted canals and stormwater drains before the southeast monsoon to prevent water stagnation. Key canals like Mambalam, Raj Bhavan and Buckingham are included in the cleaning operations. The civic body began desilting 33 canals and 1.2 lakh silt catch pits of stormwater drains. The corporation has allotted 50 lakh per zone to carry out the desilting drive and on the first day removed more than 50 truckloads of silt from a dozen canals. Workers also removed plastic waste, wrappers and bottles. A meteorite strike left a 6-foot crater emanating heat, creating confusion among the residents of Achamangalam village in Tiruppattur district. A team of officials led by district collector K. Tharparaj made a preliminary investigation. He said that Tamil Nadu Science and Technology Centre sent a team to inspect the spot. Getting to Bengaluru now, the Karnataka state government has banned liquid nitrogen while serving paan or any eatables. The decision was taken after a 12-year-old girl was hospitalized after consuming smoking paan in Bengaluru a few days back. Karnataka Food Safety and Quality Commissioner Satish Kumar has issued the directives to hotels and other eat-outs to stop using liquid nitrogen in smoking biscuits, desserts, sweets and other food items. It causes burns and gastric or airway perforations apart from possible rapid onset of abdominal pain and respiratory distress. The restaurants and food joints using liquid nitrogen in food items will face 7 years life imprisonment or imprisonment and a fine of up to 10 lakh rupees under Rule 59 of the Food Safety and Quality Act. Hyderabad News Now, Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy has announced that the government has approved the song Jai Jai Hey Telangana as a state anthem and dedicated to the nation on the occasion of Telangana Formation Day to be held on Sunday. It coincides with the conclusion of the decadal celebration of the state formation. However, the government is yet to take a decision on Telangana official emblem and Telangana Thali statue. The Chief Minister informed this at a meeting with ministers, other public representatives and party leaders and said his government has taken many initiatives for the reconstruction of Telangana. As part of it, he said the abbreviation for the state has been changed from TS to TG. Meanwhile, elaborate arrangements are being made for the State Formation Day celebrations. And Ravi, over to you now for rest of the news.
Ji, bilkul dhanyavad Subhadra. शुरुआत दिल्ली से करते हैं सुभद्रा। राजधानी में रिकॉर्ड तापमान के बीच पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए जल मंत्री आतिशी ने कल वजीराबाद तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा दिल्ली के हक का पूरा पानी नहीं दे रहा है और इसके चलते यमुना का जलस्तर सामान्य से 3.5 फीट से ज्यादा नीचे आ गया है। कल यमुना का सामान्य जलस्तर 674 फीट से घटकर 670.3 फीट पर आ गया। उन्होंने कहा कि इससे कई इलाकों में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा से यमुना में छोड़े जाने वाला पानी वजीराबाद, चंद्रावल व ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मिलता है और यहां ट्रीट कर घरों में भेजा जाता है। जल मंत्री ने कहा कि जब हरियाणा से पानी ही कम मिलेगा तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कहां से पानी उत्पादित होगा। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार देखी जा रही हैं। कल उत्तरी दिल्ली के सोनिया विहार स्थित वजीराबाद पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भीषण आग लग गई। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि प्रशिक्षण केंद्र के मालखाने में कल दोपहर आग लग गई और 10 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस घटना में कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। दिल्ली में बुधवार अग्निशमन विभाग को आग लगने की 220 दुर्घटनाओं के बारे में फोन कॉल आई। दिवाली त्यौहार को छोड़कर ये एक दिन में आग लगने से लगने वाली दुर्घटनाओं का उच्च रिकॉर्ड है। इस दौरान कचरा डंपिंग स्थानों, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक मीटर और तार आदि में आग लगने की घटनाओं की खबर मिली। चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRTC मॉनसून के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1 जून से 30 सितंबर तक 24 घंटे नियंत्रण स्थापित करेगा। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे चालू रहेगा और मुख्य रूप से मंत्रालय और मुंबई महानगर क्षेत्र में विभिन्न नगर निगमों के नागरिक अधिकारियों के बीच उचित समन्वय और संचार बनाए रखने में काम करेगा। ये मुंबई महानगर क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों का समाधान करेगा। आईएमडी ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में मौसम की स्थिति का 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। पूर्वानुमान में आगामी मॉनसून के कारण बादल छाये रहने या आंशिक रूप से बादल छाये रहने के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान में मामूली कमी आने का संकेत दिया गया है। आईएमडी ने कहा है कि अगले रविवार से मंगलवार तक तापमान गिरकर 26 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। बढ़ते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो चुका है। 1 जून को उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों और कोलकाता की 9 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। कुल 124 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसके अलावा 12 नगर विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 1 जून को होगा। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और सुभद्रा के साथ और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सुभद्रा।
Yes, Ravi, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 30 degrees Celsius. Maximum will be around 39. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 22 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 28 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. And Ravi? Today we are going to talk about anti-tobacco day again because you just reminded, you kind of talked to them in the beginning of the program. Let's just, educate people and let's reiterate and remind ourselves, our families and our friends just to stay away from, harmful substances like cigarettes, tobacco and e-cigarettes.
जी. बाकी हम सब जानते हैं कि इसके कितने ज्यादा दुष्प्रभाव होते हैं और इसका सेवन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हो सके इन तरह के उत्पादों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना चाहिए। चलिए समय हो गया है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो 1774 में आज के दिन भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया।
And in 1818, Samachar Darpan, the first vernacular newspaper, was published in Bengali language by Curry and Marshman from Serampore. And 1859, in London, Big Ben the Great Clock went into operation, chiming for the first time.
Or 1879?
Yes, that time in New York's Madison Square Garden opens its doors for the first time too. And now you go back in time for 1869, Ravi?
Jee. मैं 1964 की बात करता हूं सुभद्रा। 1964 में आज के दिन बंबई में इलेक्ट्रॉनिक यानी तत्कालीन बंबई में आज के दिन इलेक्ट्रिक ट्रॉम जो है वो अंतिम बार चली थी।
ओके 1891 बुद्धगया महाबोधि सोसाइटी एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनकरेज बुद्ध स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय अ बुद्धिस्ट मंक अनागरिका धर्मफाला।
और 1867 में आज के दिन बंबई में तत्कालीन बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी।
1977, Major Premchand and Nayak Nima Dorji Sherpa in the team on Indian Army trekkers reached the peak of Kanchenjunga. They were amongst the first Indians to reach this peak. And in 1981, first developmental launch of SLV-3 Rohini RSD-1 placed in orbit. It was used for conducting some remote sensing technology studies using a landmark sensor payload. And 1987, Daman and Diu to remain as union territories after Goa becomes the 25th state of India. And 1995, Statue Bill, a constitutional amendment bill, was introduced in Lok Sabha to extend reservation in jobs and in promotion for SCs and STs.
और सुभद्रा 2010 में आज के दिन भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट हर निजी स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था जो कि बहुत ही अच्छा कानून था जी। और 2010 में आज के दिन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल से बैंक में बचत खाता धारकों के ब्याज की गणना दैनिक आधार पर करने का निर्णय लिया गया। तब तक ब्याज की गणना बचत बैंक खाते में महीने की 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक उपलब्ध न्यूनतम राशि के आधार पर ही की जाती थी। तो यह भी बहुत अच्छा कदम उठाया गया था। और सुभद्रा अब समय हो गया है कुछ प्रमुख व्यक्तियों की पुण्यतिथियों जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है प्रसिद्ध समाज सुधारक और हिंदी के लेखक संत राम बीए का जिनका जन्म तो हुआ था 1886 में लेकिन जिन्होंने इस दुनिया से विदा ली 31 मई 1988 को। संत राम का जन्म पंजाब में होशियारपुर के बस्ती गांव में 1886 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा बजवाड़ा के हाई स्कूल में हुई थी। 1909 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए की परीक्षा पास की, तभी से वे संतराम बीए के नाम से प्रसिद्ध हुए। संतराम बीए ने अपने जीवन में 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की। उनकी आत्मकथा समकालीन दलित विमर्श में विशेष रूप से प्रासंगिक हो ची है।
1942, birth anniversary of a well-known journalist, editor, political commentator, Vinod Mehta. He was also the founder, editor-in-chief of Outlook from 1995 till 2012 and had been the editor of publications such as The Pioneer, The Sunday Observer, The Independent and The Indian Post. He was also the author of several books.
और अब बात कर लेते हैं सुभद्रा, जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ विचित्र नारायण शर्मा के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 10 मई 1898 को गढ़वाल उत्तराखंड में और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 31 मई 1998 में। विचित्र नारायण शर्मा 1952, 1957 और 1962 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। गोविंद वल्लभ पंत, डॉ संपूर्णानंद और चंद्रभात गुप्त ने उन्हें अपने मंत्रिमंडलों का सदस्य बनाया, परंतु खादी से उन्होंने अपना नाता हमेशा बनाए रखा। पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विचित्र नारायण शर्मा को जो पेंशन मिलती थी सुभद्रा, उसे वे गांधी आश्रम में जमा कर देते थे और आश्रम से उन्हें आजीविका के लिए जो धन मिलता था उसी से भी अपना काम चलाते थे।
फैंस ऑफ क्लिंट ईस्टवुड वेक अप, हॉलीवुड लेजेंड मिस्टर क्लिंट ईस्टवुड सेलिब्रेट हिज 94th बर्थडे टुडे। Mid-60s, Eastwood achieved international stardom with 3 Italian westerns, also called spaghetti westerns, A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, and The Good, the Bad and the Ugly. More flicks followed, Dirty Harry sequels and many more westerns. And besides acting, Clintwood is a successful director-producer. He's been recognized with multiple awards and nominations for his work in film, television and music. Off-screen, Eastwood made national headlines in 1986, when he was elected a mayor of Carmel, California. He served for 2 years. Good wishes to this legendary actor born in San Francisco, California.
और अब बात कर लेते हैं अपने समय के बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1914 को और उनका निधन हुआ 31 मई 2003 को। हिंदी फिल्मों के गीत संगीत के स्वर्ण युग के सारथी अनिल बिस्वास रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय, कलात्मक और मधुर बनाया, बल्कि अनेक गायक गायिकाओं को तराशकर हीरे जवाहरात की तरह प्रस्तुत किया। इनमें तलत महमूद, मुकेश, लता मंगेशकर, सुरैया के नाम प्रमुखता से गिनाए जा सकते हैं। और अनिल बिस्वास की मुख्य फिल्मों में शामिल हैं 1942 की रोटी, 1943 की किस्मत, 1948 की अनोखा प्यार, 1951 की तराना, 1954 की वारिस, 1957 की परदेसी और 1959 की चार दिल चार राहें।
He was called the percussive engine of Led Zeppelin. British rock musician and famed heavy-handed drummer John Bonham took birth this day, way back in 1948. Bonham joined Led Zeppelin when it was formed in 1968. His aggressive drumming provided the rhythmical base for the group's music and contributed largely to the success of the band, which gained an international reputation as pioneers of wholesome, solid rock. But sadly, friends, Bonham suddenly passed away at the age of 33, way back in 1980, it brought Led Zeppelin to an end.
और अब बात कर लेते हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर की, जिनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 13 अगस्त 1795 को। महारानी अहिल्याबाई होलकर किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने राज्यकाल में उन्होंने जो कुछ किया वो आश्चर्यचकित करने वाला है। वे एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थीं। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ीं। अहिल्याबाई को एक दार्शनिक रानी के रूप में भी जाना जाता है। रानी अहिल्याबाई ने कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर बनवाए। इसके अलावा इन्होंने घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया, मार्ग बनवाए, भूखों के लिए सदाव्रत अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की थी।
Tributes to Austrian composer Joseph Haydn, who passed away this day in 1809. One of the most prolific, prominent composers of classical time, Haydn wrote 107 symphonies in total, as well as 83 string quartets, 45 piano trios, 62 piano sonatas, 14 masses and 26 operas, amongst countless other scores. Haydn helped establish the forms and styles of the string quartet and the symphony. Two titles are regularly bestowed upon him: Father of the Symphony, Father of the String Quartet. A snatch of Haydn's Symphony No. 1, First Movement, Presto.
और अब बात भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार वनराज भाटिया के बारे में, जिनके जन्म हुआ था 21 मई 1927 को और निधन हुआ 7 मई 2021 को। वनराज भाटिया ने अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अभिनय से सजी फिल्म अजूबा का संगीत भी दिया था। तमस, अंकुर, मंथन, मंडी, जुनून और कलयुग जैसी फिल्मों में भी वनराज भाटिया ने संगीत दिया। वनराज भाटिया को 1988 में गोविंद निहलानी की फिल्म तमस में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और 2012 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 60 के दशक में कई मशहूर विज्ञापन फिल्मों का संगीत देते हुए अपने संगीतमय करियर की शुरूआत की थी।
Birth anniversary of country musician Johnny Paycheck, whose real name was Donald Little. Paycheck was performing in talent contests by the age of 9. By the time he reached 15, he started playing in bars and clubs. He achieved his greatest success in the 1970s as a force in country music's outlaw movement, popularized by artists like Hank Williams Jr., Waylon Jennings, Willie Nelson, Billy Joe Shaver and Merle Haggard. A tribute to the country singer Paycheck, who enjoyed crooning real-life songs and played brilliant steel guitar.
Take this job. Shove it. I ain't working here no more. A woman done left and took all the reason I was working for. You better not try.
और कार्यक्रम के अंत में अब बात 1950 से 1980 के दशक तक हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटाखारों में से एक रहे राज खोसला के बारे में।
छुप गए सारे सितारे, क्या बात हो गई।
तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया, दिन में रात हो गई।
राज खोसला को देव आनंद जैसे अभिनेताओं की सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है। गुरुदत्त के अंतर्गत अपना कैरियर शुरू करने के बाद वे सीआईडी की तरह हिट फिल्में बनाते रहे। वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मुख्य फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की थी, जिसने उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिलाया था।
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या।
राज खोसला की 80 के दशक में फिल्में व्यावसायिक तौर पर सफल नहीं रहीं। इन फिल्मों में दासी, तेरी मांग सितारों से भर दूं, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन और माटी मांगे खून शामिल हैं। और मुख्य फिल्मों में उनकी शामिल हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, दो रास्ते, 16वां साल, काला पानी, एक बार फिर। चलते चलते आज का विचार कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।